अनुगार धर्मामृत लेक्चर नंबर 17 ओ नमः शिवे ओ नमः शिवे ओ नमः शिवे ओ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंतानम् नमो सिद्धानम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूनम् प्रणम्य वीरम् परमावबोधम् आशाधरो मूढविबोधनाय सोपन्यधर्मामृतधर्मशास्त्र पदानि किञ्चित् प्रकटीकरोति पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह अनुगार धर्मामृत नाम ग्रंथ है और उसको पढ़ते हुए हम आए हैं पृष्ठ संख्या 63 पर 63 यहाँ भी अपनी बात पाप पुण्य के फलों की हो चुकी है। अभी धर्म शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए हमने जो कल पढ़ा था 62 नंबर पृष्ठ पर नीचे से तीसरी लाइन वहां से पढ़ेंगे। जीव की सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप विशुद्धि को धर्म कहते हैं। विशुद्धि में तीनों को लिया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप संक्लेश परिणाम को अधर्म कहते हैं। वह अधर्म देखो जहां मिथ्यात्व है वहां अधर्म है और वह अधर्म पुण्य पाप रूप बंध का कारण है। यानी मिथ्यात्व तो पुण्य बंध का कारण नहीं है मिथ्यात्व इटसेल्फ तो पाप बंध का ही कारण है किंतु मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ वहां जो शुभ परिणाम होंगे उससे पुण्य बंध होगा। वैसे तो शुभ परिणाम के कारण भी ज्ञान आवरण दर्शन मोहिनी अंतराय बनता है वो तो पाप रूप ही है वो तो हमने देखा है पहले बहुत बार। तो यहाँ कहते जो अधर्म है उस पुण्य पाप रूप बंध का कारण है जिसका फल दुखदायक संसार है। लोगों की यही भ्रमना है कि पाप का फल तो दुख रूप है परंतु पुण्य का फल सुख रूप है इसलिए पुण्य भला है करने जैसा है और वही करते रहना चाहिए उसी से आगे चलकर मोक्ष होगा इसी भ्रमना चलती है। ये तो पहले मान्यता में लेना है कि ये भी उसका फल भी दुख रूप ही है उसमें कुछ सुख है ही नहीं है। जीव की विशुद्धि रूप वह धर्म अभी हमने देखा ना समय दर्शन ज्ञान चारित्र ये जीव की विशुद्धि है और वह धर्म क्या करता है अधर्म को पूरी तरह से हटाते हुए अपनी अंतरंग बहिरंग कारण रूप सामग्री को प्राप्त करके यानी जीव के स्वयं अपनी योग्यता से और उस समय यथायोग्य निमित्त भी होगा वहां पर जब अयोग केवली नामक 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में संपूर्ण होता है कौन धर्म धर्म प्रकट हुआ आंशिक रूप से और वो पूर्णता को प्राप्त हुआ तब जीव को संसार के दुखों से उठाकर मोक्ष सुख में धरता है। ये धर्म जीव को मोक्ष सुख में धरता है इसलिए उसे परमार्थ से धर्म कहते हैं। उसको धरना ये धर्म का अर्थ होता है ये ध्रुव धातु है धारयति इति धर्म। वैसे कहीं कहीं गुणों को भी धर्म क्यों कहते हैं जैसे आत्मा ज्ञान को धरता है अग्नि उष्णता को धरती है जो धारयति इति धर्म तो अग्नि का धर्म क्या है तो उष्णता स्वभाव को भी धर्म कहते हैं। यहाँ अलग अपेक्षा यहाँ तो जीव को मोक्ष रूपी सुख प्राप्त कराता है मोक्ष सुख में धरता है इसलिए इसको धर्म कहते हैं। अब यहाँ विशेषार्थ में बताएंगे धर्म शब्द जिस ध्रुव धातु से बना है संस्कृत में ये जो वर्ब्स है ना क्रियापद उसको धातु कहते हैं उसका अर्थ है धरना इसलिए धर्म शब्द का अर्थ होता है जो धरता है वह धर्म है। किसी वस्तु को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने को धरना कहते हैं। यहाँ रखा, यहाँ धरा। धर्म भी जीव को संसार के दुखों से उठाकर मोक्ष सुख में धरता है, इसलिए उसे धर्म कहते हैं। यह धर्म शब्द का व्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ है। व्युत्पत्ति यानी शब्द कैसे तैयार हुआ, उसको कहते हैं व्युत्पत्ति। यानी ध्रुव धातु से बना, जो धारण करता है उसको, यानी धरता है उसको धर्म कहेंगे। इस अर्थ से उसको व्युत्पत्ति का अर्थ बताया। किंतु धरना तो एक क्रिया है। क्रिया तो परमार्थ से धर्म या अधर्म नहीं होती। तब परमार्थ धर्म क्या है? तो परमार्थ धर्म है आत्मा की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप निर्मलता। उसी को ऊपर विशुद्धि रूप कहा। दर्शन, ज्ञान और चारित्र आत्मा के गुण हैं। जब वे विपरीत रूप होते, जब गुण विपरीत कहेंगे तो ये पर्यावरण की अपेक्षा बात करें। गुण तो गुण ही है, तो किसी न किसी अवस्था में विद्यमान होते हैं। ऐसा नहीं कि गुण अलग हुआ और उसके पर्याय अलग, ऐसा तो है ही नहीं है। तो गुण जब विपरीत रूप होते हैं, विपरीत रूप परिणमते हैं, तब इन्हें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहते हैं। उनके होने से, किनके? मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र होने से आत्मा की परिणति संक्लेश रूप होती है। उससे ऐसा कर्मबंध होता है जिसका फल अनंत संसार है। किंतु जब मूढ़ता आदि दोषों के दूर होने पर दर्शन सम्यक दर्शन होता है, यानी जो दर्शन गुण यानी श्रद्धा गुण है वो सम्यक दर्शन होता है। सम्यक यानी यथार्थ होता है। जो दर्शन है वो यथार्थ होता है, उसको हम कहेंगे सम्यक दर्शन होता है। कैसे होता है? जब मूढ़ता आदि दोषों के दूर होने पर। ये मूर्ता आदि दोष क्या है, नलिन भाई को पूछना है कि और किसी को पूछना, अरविंद भाई को पूछना? तीन मूर्ता है, ये तीन तो मूर्ता है। और क्या दूर होने पर सम्यक दर्शन होता है? शंकादि दोष। निशंक तो उसका अंग है, शंका, वांछा, मद। 25 टोटल नहीं हो गए। क्या क्या नहीं हो गए? शंकादि 8 दोष नहीं हो गए, 8 मद नहीं हो गए, 8 16 हो गए, 6 अनायतन। अनायतन है अस्थान, धर्म के अनायतन कहेंगे। कौन से? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और उनका सेवन करने वाले, उनके फॉलोअर्स। ये धर्म के अस्थान है, तो उनका त्याग होता है इन जीवों। तो कहते वो अनायतन नहीं होते और ये तीन मूर्ताएं नहीं होती है, तब जाके उसको कहेंगे सम्यक दर्शन होता है। देखो जब मूर्ता आदि, हाँ, उनसे दूर रहना करते हैं, उनके प्रति कोई अहोभाव नहीं होना। इतने उनमें ये तो अच्छा है ना, इतना तो करते हैं ना, यानी वो कुछ बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ऐसा अगर हमें उनके प्रति अहोभाव है, क्योंकि ये तो धर्म के स्थान है। लौकिक कोई उनका गुण है, कोई सज्जनता है, कोई उसकी बात हम यहाँ नहीं करें। धर्म के मार्ग में अगर हम उसको अच्छा मानते हैं, मान्यता में लेना इसको, केवल संगति हमारे मित्र के थोड़े उससे दूर हो जाएंगे। मान्यता में अगर उनको ठीक है या अच्छे है, हमसे कुछ अच्छे तो है ना, उनके प्रति विनय होना, उनके प्रति अहोभाव होना, क्यों ये धर्म के स्थान मानकर तो कहते वो उनके अनायतन है। लौकिक तो सज्जनता वो रहेगी, उनके साथ हमारी मित्रता भी होगी, उसकी बात नहीं यहाँ पर। धर्म के अगर संदर्भ में हम उसका विचार करेंगे तो बिल्कुल वो यानी वो तो दया के पात्र है, ऐसा कहेंगे। वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, इतना तो उनमें अच्छा है ना, ये इतना तप तो कर रहे हैं ना, ये मंदिर तो जाते हैं ना रोज, यानी क्या है उसके प्रति कुछ तो कुछ अच्छा है। अरे रोज मंदिर जाता है पर कुदेवादी कोई भजन करता है, उनका सेवन करता है, उसको निर्णय नहीं है तो उसमें अच्छा ही क्या है, तो उसके बारे में इस तरह समझना। जब मूर्ता आदि दोषों के दूर होने पर दर्शन सम्यक दर्शन होता है, संशय आदि दोषों के दूर होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, यानी यह मूर्ता आदि दोषों के साथ वो मिथ्या दर्शन था, जब सम्यक दर्शन हुआ तो वो 25 दोष नहीं रहे। पहले ज्ञान मिथ्या था तो क्या क्या था उसमें, संशय आदि में संशय विपर्य और अनध्यवसन। संशय ने ये बराबर है कि वो बराबर, कोई निर्णय नहीं कर पाता है, दोलाय में जो पेंडुलम इधर से उधर जाता है ना, वैसे इसके संशय रहता है मन में। विपर्य ने निर्णय है पर कैसा, उल्टा वस्तु स्वरूप से उल्टा। और अनध्यवसाय ने जानता है कुछ तो है, निर्णय नहीं बिल्कुल, होगा कुछ तो यह अनध्यवसाय, यही सच्चा है यही यथार्थ है ऐसा निर्णय उसके नहीं है। तो कहते वो सब दूर होकर ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, और मायाचार आदि के दूर होने पर चारित्र सम्यक चारित्र होता है। पहले मिथ्या चारित्र था, मायाचार आदि, जैसे माया नाम का शल्य बताया ना, मिथ्या तो माया और निदान, अभी वैसे थोड़े प्रमाण में निदान रहेगा परंतु ये मिथ्या दृष्टि जैसा नहीं रहेगा। तो कि चारित्र सम्यक चारित्र होता है, तब जो आत्मा में निर्मलता होती है वही वस्तुतः धर्म है। यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होने पर आत्मा में जो निर्मलता आती है, वहां उसको विशुद्धि कहा था, वही धर्म है। जो जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पूर्णता की ओर बढ़ते जाते हैं, त्यों त्यों निर्मलता बढ़ती जाती है। और जो जो निर्मलता बढ़ती जाती है त्यों त्यों सम्यक दर्शन आदि पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। आप कहेंगे क्या सम्यक दर्शन पूर्ण नहीं है? पूर्ण तो है, सम्यक दर्शन तो है, परंतु एक अपेक्षा वो क्षायिक नहीं है, तब हम कहेंगे पूर्ण नहीं है। और जैसा चौथे पांचवे का या मुनियों का है और अरिहंतों का है, उसमें कुछ अंतर है कि नहीं है? परम अवगाढ़ हो जाता है तो कहते पूर्णता हो जाती है। इस तरह बढ़ते हुए जब जीव मुनिपद धारण करके अरहंत अवस्था प्राप्त कर अयोग केवली नामक 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में पहुंचता है, तब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पूर्ण होते हैं, और तत्काल ही जीव संसार से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। परमात्मा प्रकाश में कहा है, दूसरे भाग के 68 ऊपर पढ़ेंगे हम। वैसे अपना परमात्मा प्रकाश चल ही रहा है ना? भाव विशुद्ध अपण धम्म भवे विणु लेहु चौगई दुख ही जो धरई जीव पड़ंत हुए। आत्मा का मिथ्यात्व रागादि से रहित विशुद्ध भाव ही धर्म है। उसको शुद्ध कहो विशुद्ध कहो, ऐसा मानकर उसे स्वीकार करो। जो संसार में पड़े, ये जो धर्म है वो क्या करता है, तो संसार में पड़े हुए जीव को उठाकर मोक्ष में धरता है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है कि यहाँ से उठा ले गया और ऊपर सिद्धालय में ऊपर जाके मोक्ष जीव की अवस्था है। इस टीका में ब्रह्मदेव ने लिखा है, ये ब्रह्मदेव सूरी नामक जो हुए उन्होंने इसकी संस्कृत टीका लिखी है। अभी जो हमारा अभ्यास चल रहा है उसका हिंदी टीका हम हिंदी अनुवाद हम पढ़ते हैं। तो ब्रह्मदेव ने लिखा है यहाँ धर्म शब्द से निश्चय से जीव का शुद्ध परिणाम ही लेना चाहिए। धर्म क्या है? जीव का शुद्ध परिणाम। और जो शुद्ध नहीं है वो क्या है? अशुद्ध है, वो क्या कहेंगे उसको? अधर्म है। अशुद्ध में किसको लेना है? अशुद्ध पुण्य पाप दोनों को, मिथ्या को तो ले ही लेंगे, तो पुण्य भी लेंगे और पाप की भी। उसमें वीतराग सर्वज्ञ के द्वारा रचित नए विभाग से सभी धर्मों का अंतर्भाव हो जाता है। उसका खुलासा इस प्रकार है, यानी ये जो उन्होंने लिखा सभी धर्मों का अंतर्भाव हो जाता है, नित्य धर्म का लक्षण अहिंसा है, वह भी जीव के शुद्ध भाव के बिना संभव नहीं है। क्योंकि हमने ये देखा है कि जीव में जो रागादि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और उसकी उत्पत्ति ही नहीं होना वही हम अहिंसा है। तो ये शुद्ध भाव के बिना तो संभव नहीं है। गृहस्थ और मुनि धर्म रूप धर्म भी शुद्ध भाव के बिना नहीं होता, यानी गृहस्थ धर्म जो है या मुनि धर्म जो है, तो गृहस्थ धर्म क्या है? समय दर्शन प्राप्त हुआ उसको, वो तो शुद्ध भाव के बिना तो नहीं होता। उत्तम क्षमा आदि रूप दस प्रकार का धर्म भी जीव के शुद्ध भाव की अपेक्षा रखता है। ये उत्तम क्षमा जो बताया है आपने, क्या किसमें? गृहस्थ, गृहस्थ में चौथा भी और पांचवा दोनों लेना, दोनों ही गृहस्थ है। हमने देखा ना, तो उसके प्रतिमाएं जब हो जाती है दसवीं में या ग्यारहवीं में, वो ग्रह का त्याग कर देता है, तब तक वो गृहस्थ है। तो उत्तम क्षमा, उत्तम शब्द तभी लगता है जब ये मुनियों की अपेक्षा जो उतनी प्रचुरता से वीतरागता उत्पन्न हुई है। देखो वीतरागता ही धर्म है, उसको समझाने के लिए उसके लक्षण बताने के लिए दस प्रकार से समझाया। दस धर्म नहीं है, धर्म एक ही है और उसके लक्षण दस प्रकार से वर्णित है। ये हम तो क्रोध मान माया लोभ से परिचित है, तो क्रोध के अभाव रूप वहाँ क्षमा देना, पर क्षमा है वो पॉजिटिव है, नहीं तो वो अभाव रूप धर्म नहीं है। धर्म तो सद्भाव रूप है, पॉजिटिव है, वो आत्मा का लक्षण है। क्षमाएं आत्मा का लक्षण है, वो उसका सीधा भाव है, और क्रोध तो विपरीत भाव हो गया उसका। परंतु हम उसको समझाने के लिए क्रोध के अभाव रूप ऐसा समझाते हैं, परंतु है तो वे सद्भाव रूप लक्षण। ऐसे दही दसो दस जो है सब में यही लगाना, क्षमा है, अर्धव है, आर्जव है, सत्य शौर्य सभी के ऊपर। ऐसा अगर नहीं मानेंगे तो फिर क्रोध कर रहे हो, फिर उसका अभाव करो, फिर धर्म प्रकट होगा ना। उत्तम क्षमा आदि रूप दस प्रकार का धर्म भी जीव के शुद्ध भाव की अपेक्षा रखते, यानी जीव के शुद्ध भाव का ही दस प्रकार से वर्णन किया। भाव तो एक ही प्रकार का, उसी में ये सब शामिल है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप धर्म भी शुद्ध भाव रूप ही है। देखो शुद्ध भाव जब कहेंगे तो आत्मा के अनंत गुण है, अनंत गुण वो पूरी पूर्ण शुद्धता को प्राप्त होंगे मुख में, तो वैसे तो अनंत धर्मात्मक वस्तु होती है, तो उस अपेक्षा से कहना तो वो भी शुद्ध भाव कहेंगे, सब सभी गुणों का शुद्ध भाव। यहाँ तो तीन पर घटित किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। राग द्वेष मोह रहित, यहाँ मोह ने मिथ्या को लेना। वैसे राग द्वेष को भी चारित्र की अपेक्षा चारित्र मोह कहते हैं, परंतु यहाँ मोह जब अलग से लिखते हैं तो मिथ्या तो रूप लेना। तो राग द्वेष मोह रहित परिणाम को धर्म कहा है, वह भी जीव का शुद्ध स्वभाव ही है। यानी पहले में पहले धर्म प्रकट होता है तो मिथ्या तो मोह रहित, यानी मिथ्यात्व रहित और अनंतानुबंधी रहित होता है। तो अनंत अनुबंधी गया तो कहेंगे वो तो अबंध हो गया या राग द्वेष से रही, तो ऐसे कहने की पद्धति, क्योंकि ये तो मुख्य है ना। राग द्वेष रहेंगे कैसे, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन रहेंगे भी चौथे गुण स्थान वाले के, परंतु वो नहीं के बराबर है, अभी उसका स्वामित्व जीव को नहीं है, तो उसके है ही नहीं ऐसा कहेंगे, इस अपेक्षा से भी कथन आता है। तो नए यानी वो कथन की अपेक्षा नहीं समझेंगे, तो प्रश्न पूछते हैं यहाँ ऐसा लिखा वहाँ ऐसा है, कुछ तो घोटाला है। अच्छा है एक ही कुंकुंदाचार्य ने समय सार भी लिखा प्रवचन सार भी, समय सार में लिखते राग जीव का है ही नहीं, वो कुद्गल का है, जड़ है। प्रवचन सार में जिस समय जीव राग करता है जीव स्वयं राग रूप हो गया, राग कहा, रागी नहीं कहा जीव को, राग कहा, क्रोध कहा, मान कहा, जिस समय क्रोध हो रहा है जीव स्वयं उस रूप परिणमित हुआ है, तो जीव से अभिन्न है, जीव स्वयं क्रोध है उस समय, ऐसा कह दिया। अपेक्षा से ये सब कथन होते हैं और हमें अपेक्षा समझकर ही आगे बढ़ना है। जब भेद ज्ञान की बारी, पहले तो पहले वो अपने पर्याय में है, अपना दोष है, ये स्वीकार करना है। फिर उसके बाद उसके साथ तो भेद ज्ञान करना है ना, फिर कहेंगे वो तो अपने पर्याय में भले हुआ है, उन्हें तो अपने स्वभाव नहीं है, त्रिकाल स्वभाव नहीं है, मेरा तो स्वभाव ज्ञानमय है, ये मेरा है ही नहीं जागी इसको, ये सारे ज्ञान में और अपने श्रद्धा में लेने की बात, बाहर से तो कुछ नहीं करना है, ज्ञान श्रद्धा में सारा भेद ज्ञान का प्रोसेस होगा। जैसे घर का कोई बालक गलत संगति में पड़ जाता है, या कोई बहुत सबके पास से पैसा निकालता होगा पिताजी का नाम लेके, तो पिताजी क्या पेपर में ऐसा अनाउंस करते हैं, आज से यह मेरा बेटा, मुकमुक नाम, आज से मेरा नहीं, पहले यह मेरा बेटा कह रहे ना, और फिर कहते ये मेरा नहीं। ऐसे ही राग है तो अपनी पर्याय में, अपनी भूल के कारण हो रहा है, परंतु वो अपना कायमी स्वभाव नहीं है, वो मेरा है ही नहीं, ऐसा कहीं नहीं, मैं तो ज्ञानमय हूँ, ये राग मेरे से भिन्न है, वो तो मेरा है ही नहीं, इसको कहेंगे भेद ज्ञान। तो यहाँ कहते हैं राग द्वेष मोह रहित परिणाम को धर्म कहा है, वह भी जीव का शुद्ध स्वभाव ही है। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है, क्योंकि हम देखते हैं ना अलग अलग जगह धर्म की जो परिभाषा है डेफिनेशन वो अलग अलग है, जैसे वस्तु स्वभाव धम्मो, यानी वस्तु स्वभाव ही धर्म है, कहीं कहा है चारित्रो खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है, और चारित्र क्या है, जीव का मोह और क्षोभ रहित परिणाम समभाव है, अहिंसा परमो धर्म, रत्नत्रय धर्म, दशलक्षण धर्म, ये सभी परिभाषाएं बता रहे हैं। तो वह भी जीव का शुद्ध स्वभाव ही है। इस प्रकार धर्म चारों गति के दुखों में पड़े हुए जीव को उठाकर मोक्ष में धरता है। अब प्रश्न पूछे, आपने पहले कहा था कि शुद्धोपयोग में संयम आदि सब गुण प्राप्त होते हैं, और यहाँ कहते कि आत्मा का शुद्ध परिणाम ही धर्म है, उसमें सब धर्म गर्भित है, इन दोनों में क्या अंतर है? समाधान, वहां शुद्धोपयोग संज्ञा की मुख्यता है और यहाँ धर्म संज्ञा मुख्य, संज्ञा ने नाम, वह हम शुद्धोपयोग कहकर उसको समझा रहे हैं और यहाँ धर्म कहकर समझा रहे, ये उसमें डिफरेंस है, इतना ही विशेष है, दोनों के तात्पर्य में अंतर नहीं। यानी शुद्ध परिणाम कहो शुद्धोपयोग कहो यहाँ धर्म कहो एक ही बात है, यानी शुद्धोपयोग में ही धर्म की शुरुआत होती है, इसलिए सब प्रकार से शुद्ध परिणाम ही कर्तव्य है। कर्तव्य ने करने योग्य क्या है, तो कहते शुद्ध परिणाम। धर्म की इस अवस्था की प्राप्ति में ध्यान को प्रमुख कारण बतलाया है। यानी धर्म कैसे प्राप्त होगा, तो कहते ध्यान के द्वारा। तो ध्यान तो हम रात दिन करते रहते हैं, पैसे का करते हैं, अच्छा अच्छा आर्तर रोधा ध्यान करते हैं। कहा भी है कि ध्यान में दोनों ही प्रकार के मोक्ष के कारण मिल जाते हैं, ये मेरे ख्याल से द्रव्य संग्रह की बात होनी चाहिए, द्विहम पे मोक्ष मागो, हाँ नीचे लिखा है, देखो द्विहम पे मोक्ष हेवम झाणे पाउनदी जम मुनि नियमा तम्मा पयत्त चित्ता जूयम झाणम समभसह। द्विहम यानी दोनों प्रकार का भी मोक्ष मार्ग, मोक्ष हेतु झाने यानी ध्यान में, झाण यानी ध्यान, प्राकृत शब्द है, पावन दिए प्राप्त करते हैं। जम मुनि नियमा यानी दोनों प्रकार के जो मोक्ष मार्ग, जिस यहाँ तो कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, ध्यान की अवस्था में ही प्राप्त हो। मोक्ष मार्ग की शुरुआत कब होती है तो कहते ध्यान अवस्था में, जब आत्मा का अनुभव होगा उस समय मोक्ष मार्ग शुरू हुआ। यह मुनि की अपेक्षा लिखा है, चौथे गुणस्थान वाले की भी यही बात है। आत्म संबंधी तत्व विचार में लीन था, जब आत्मा का अनुभव हुआ तभी उसको कहेंगे, उसको आत्मा का ध्यान हुआ उसी समय उसका मोक्ष मार्ग यानी समय दर्शन की प्राप्ति हुई, मोक्ष मार्ग शुरू हुआ। व्यवहार से मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं? अब उस जीव के जो देवगुरु शास्त्र के प्रति जो श्रद्धा भक्ति सात तत्वों के जो कुछ उसके निर्णय है उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहेंगे। कब कहेंगे? जब निश्चय होगा तब। उसके पहले भी भक्ति थी ना, परंतु उसको वो व्यवहार नहीं कहते, इसलिए कहते दोनों ही प्रकार का मोक्ष हेतु को मोक्ष मार्ग ध्यान अवस्था में प्राप्त होते हैं। कहते उसके लिए क्या करना? तम्मापयत्त चित्ता, इसलिए प्रसन्न चित्त होकर जुयम छाणम समभस, यानी ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ ऊपर लिखा है अतः आलस्य छोड़कर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान तो तब होगा जब आत्मा की अनुभूति होगी, उस समय उसको ध्यान कहेंगे हम, परंतु उस संबंधी अभ्यास तो होना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ तो हम देखो अभी किसमें परमात्मा प्रकाश में ही बात आ रही है ना बारंबार, कि शास्त्र पढ़कर भी आत्मा का ध्यान नहीं करता है, आत्मा का लक्षण नहीं करता है, तो मूर्ख है, पशु है। कितनी अलग अलग पद्धति से बताया, यही बात यहाँ कहते हैं कि आलस छोड़कर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, यानी आत्मा को ही लक्ष्य बनाकर उसको जानते रहना चाहिए। क्योंकि हमारा उपयोग कहेंगे तो पांचों इंद्रियों के द्वारा बाहर ही भटकता रहता है, उसी के विचार चलते रहते हैं। क्योंकि जो दिन भर हम करेंगे देखेंगे सोचेंगे वही बात वो चलती रहेगी मन में भी उसी के। जब हम तत्व विचार की बात करते हैं, तत्व निर्णय करते हैं, शास्त्र अभ्यास करते हैं, तो वो तत्व हमारे मन में उसका घुलन चलेगा, उससे भी कुछ नहीं है। स्थिरता से आत्मा को लक्ष्य करके एकांत में बैठ जाना, एकांत यानी अभी उस पर हम गौर करेंगे उसी को एकांत कहना, दूसरे का लक्ष्य छोड़ दिया वही होगा एकांत। तो कहते ध्यान का अभ्यास करना चाहिए।
नाइन्टी वन नहीं पढ़ा।
अच्छा अच्छा, ओ प्रश्न और उत्तर उसी में से था क्या? मुझे लगा उन्होंने ऐसे लिया, अभी बाद में पढ़ेंगे। चलो मिथ्यार्थाभिनिवेश शून्यम अभवत् संदेह मोह भ्रमम् वान्ताशेष कषाय कर्म विदुदासीनं च रूपं चित तत्त्वं सद्रुगवाय वृत्तमयनं पूर्णं शिवस्यैव तत् रुन्धे निर्जरयत्यपीतरदहं बन्धस्तु तद्व्यत्यया। उसका अर्थ तो अभी हम लिखा है। अभी उसी का और भी यहाँ विशेषण बताएंगे। निश्चय रत्नत्रय के लक्षण के निर्देश पूर्वक मोक्ष संवर निर्जरा तथा बंध के कारण कहते हैं। अभी उसका है ये ऊपर 91 नाम कर दिया। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 91 है, वहाँ ऊपर कुछ नंबर था नहीं, केवल उन्होंने प्रश्न और समाधान वो 91 वहां से निकाल दिया, यानी हमने पढ़ा वो ठीक पढ़ा क्या? मिथ्या, मिथ्या ने झूठा, विपरीत जो यथार्थ नहीं है उसको मिथ्या कहेंगे। मिथ्या अर्थात विपरीत या प्रमाण से बाधित। प्रमाण का अर्थ क्या है? जो सत्य है, स्टैंडर्ड है, उसको प्रमाण कहेंगे। प्रमाण से बाधित, जैसे हम कहेंगे आगम ये प्रमाण है, तो आगम से जो विरुद्ध है वो क्या है? प्रमाण से बाधित है। ये जो सत्य वस्तु स्थिति है वो प्रमाण है, और जो उससे विपरीत हमारी मान्यता है वो प्रमाण से बाधित कहेंगे उसको। उस अर्थ को मिथ्या अर्थ कहते हैं और सर्वथा एकांत रूप मिथ्या अर्थ के आग्रह को मिथ्या अर्थ का अभिनिवेश कहते हैं। उसका आग्रह, उसका अभिप्राय, अभिनिवेश शब्द से अभिप्राय ऐसा भी अर्थ होता है। क्या कह रहे हैं? सर्वथा एकांत रूप मिथ्या अर्थ के आग्रह। पदार्थ जैसा है, अर्थ का एक अर्थ होता है पदार्थ भी, जैसा है वैसा नहीं मानना, अन्यथा मानना, खोटा मानना, अयथार्थ मानना, और उसका सर्वथा एकांत ऐसा ही है पूरी वस्तु। जैसे जिनागम में तो कितनी बातें ऐसी बताई कि इस अपेक्षा वस्तु ऐसी है, द्रव्य अपेक्षा नित्य है, पर्याय अपेक्षा वो द्रव्य ही निरंतर परिणमित हो रहा है, द्रव्य ही नया नया उत्पन्न, पर्याय की अपेक्षा। परंतु कोई ऐसे भी मानने वाले ना कि सर्वथा द्रव्य का नाश ही हो जाता है और द्रव्य सर्वथा उत्पन्न होता है, नया नया, प्रत्येक समय का द्रव्य ही नया है, तो क्या हुआ? मिथ्या एकांत हो गया। तो सर्वथा एकांत रूप मिथ्या अर्थ के आग्रह को मिथ्या अर्थ का अभिनिवेश कहते हैं। ये जो अन्य अन्य जो दर्शन है कहो, उनके ऐसी अन्य अन्य मान्यताएं हैं, उससे रहित यानी ऐसे मिथ्या अभिप्राय से रहित आत्मा के स्वरूप को निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं, अथवा जिसके उदय से मिथ्या अर्थ का आग्रह होता है। अब यह कर्मों की निमित्त की बात ली, कि मिथ्या अर्थ का आग्रह, ये जो अर्थ यानी तत्वार्थ कहो या अर्थ कहो यानी पदार्थ है, जो है नहीं वैसे उसका आग्रह है जीव को, ये सबका करने वाला ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है, ये पुण्य करते करते ही हमको मोक्ष प्राप्त होगा, ये क्या है? मिथ्या आग्रह है। तो ऐसा आग्रह होता है, ऐसे दर्शन मुनि कर्म को भी मिथ्या अर्थ का अभिनिवेश कहते हैं। यानी वो दर्शन मुनि कर्म भी जो मिथ्या तो हम कहेंगे उसको, उसका नाम भी मिथ्या तो कर्म है, उस दर्शन मुनि कर्म से रहित आत्मा का स्वरूप निश्चय सम्यक दर्शन है। दर्शन मुनि कर्म से रहित करते उसका उदय नहीं है, तो उपशम समय तो में अंतर्मूर्त के लिए उदय रुक गया है, तो वहां जीव के समय दर्शन हुआ है। क्षोपम में मिथ्या तो का उदय नहीं है, समय प्रकृति का होकर उदय में आता है, तब भी उसका मिथ्या अभिनिवेश तो नहीं रहा। क्षय समय में तो उसका क्षय ही हो गया है, तो उसको है ही नहीं ये सत्ता, तो भी उसको हम कहेंगे दर्शन मुनि से रहित हुआ। यानी एक आपका ऐसा प्रश्न है, शाव श्रमिक समय तो कहो या वेदक समय को, वो कैसा है? तो चलमल अगाढ़ दोष से सहित है, तो उसका क्या समय तो भी है कि नहीं है, ऐसा प्रश्न है ना? समय दर्शन तो है, परंतु कैसा है? इतना स्थिर नहीं है, इतना दृढ़ नहीं है जैसे क्षाई समय तो होना चाहिए, थोड़ा किंचित दोष है वहां पर, गिर तो औषमिक समय दृष्टि भी उसका काल होने के बाद गिर सकता है, परंतु ये इतना दृढ़ नहीं है, बस इतनी बात है। उसमें से जब क्षायिक हो जाएगा तो वो एकदम दृढ़ हो जाएगा, गिरने की बात तो यानी क्षायिक समय दृष्टि तो गिर ही नहीं सकता, उसके नीचे से गुणस्थान चौथा है और ऊपर वो बारहवें तक जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो कहते हैं कि परंतु बाकी जो है औषमिक समय तो अंतर्मूर तक रहता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक समय क्षमिक हो जाता है, या गिरेगा तो मिथ्या तो में भी जा सकता है। यह स्थानु है या पुरुष, स्थानु यानी ठूंठ, ठूंठ यानी ट्रंक ऑफ अ ट्री, क्या कहते हैं उसको, ट्रंक दूसरे के, तो क्या स्थानु है कि कोई पुरुष खड़ा है, हम कहते ना कोई चीज यानी अभी कोई कॉलम है या जो कुछ है, खंबा है, दूर से क्या देखते, अरे कौन खड़ा है वहां, क्या है, निर्णय नहीं कर पाते ना, तो कहते यह स्थानु है या पुरुष। इस प्रकार के चंचल ज्ञान को संदेह कहते हैं, प्रश्न है ना, संशय कहेंगे, संदेह कहते हैं। चलते हुए पैर को छूने वाले तृण आदि के ज्ञान की तरह पदार्थ का जो अनध्यवसाय होता है उसे मोह कहते हैं, विमोह जिसको कहें, संशय विमोह अनदिवस, संशय विमोह और विभ्रम, विभ्रम ऐसे तीन शब्द है। यहाँ मोह लिखा है परंतु अनदिवसाय को विमोह भी कहते हैं। एक ज्ञान की बात चल रही है, क्या उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया, रस्ते में चल रहे थे और वहां कुछ स्पर्श हुआ, कुछ तो लगा, तो घास था कि कुछ अन्य था कि कुछ समझ में नहीं, निर्णय नहीं हुआ, यानी कुछ लगा इसका तो ज्ञान हुआ, ज्ञान नहीं हुआ ये नहीं कह रहे, उसको कुछ यानी लगा उसका ज्ञान नहीं हुआ तो हम उसको ज्ञान में नहीं लेते, ज्ञान तो हुआ है परंतु त्रुट था क्या, कुछ कोई दूसरा छोटा मोटा जीव था कि कुछ था, ये कुछ ख्याल में नहीं आया उसको, तो उसको कहीं अनदिवस, इसको मोह कहा, जिसको विमोह भी कहते हैं, जो वैसा नहीं है उसे उस रूप में जानना, जैसे ठूठ को पुरुष जानना, ये क्या है, ब्रह्म है, उसको विभ्रम भी कहा, यानी शास्त्र में अन्य भी तीन नाम आते हैं, संशय विमोह और विभ्रम, उसी को हमने संशय, अनद्यवसाय और विपर्य, इन संदेह मोह और भ्रम से रहित आत्मा के स्वरूप को निश्चय सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्रोधादि कषाय और हास्य आदि नौ कषायों से रहित, क्रोधादि कषाय में किस चीज को लेंगे माधुरी, नहीं क्रोधादि कषाय में क्या लेना, क्रोध मान माया, और हास्यादि नौ कषाय में जो आप कहते हैं क्या लेंगे, देखो याद करने में आसान है ना, हास्य के साथ रति लगा, हास्य रति, रति शोक, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, और फिर तीन वेद, इसको हम कहेंगे नौ कषाय। तो क्रोधादि कषाय और हास्य आदि नौ कषायों से रहित ज्ञानावरण आदि कर्म और मन वचन काय के व्यापार रूप कर्म को नष्ट करने वाला आत्मा का उदासीन रूप निश्चय सम्यक चारित्र, देखो क्या क्या इसको कैसा वर्णन किया है, आत्मा का उदासीन रूप निश्चय सम्यक चारित्र, हम भी हमारे मन के विरुद्ध बात हो गई तो उदासीन मुंह लटका कर बैठते, उसको उदासीन नहीं ये तो वितराग भाव को उदासीन भाव के, तो ये वितरागता से क्या होता है और ये वितराग भाव कैसा है, तो क्रोधादि कषायों से रहित भाव है, वह हास्यादि नौ कषायों से भी रहित ऐसा आत्मा का परिणाम है, उसको हम वितराग परिणाम कहे, शुद्ध भाव कहेंगे, उसी को यह निश्चय सम्यक चारित्र कहा है। और कैसा है, ज्ञानावरणादि कर्म को नष्ट करने वाला, क्योंकि वितरागता यानी आत्मा अपने में स्थिर हो जाएगा तो बढ़ती हुई वितरागता के साथ ये कर्मों का पूर्ण नाश होने वाला है, इसलिए कहते हैं ज्ञानावरण आदि कर्म को नष्ट करने वाला, और किसको नष्ट करने वाला है, मन वचन काय के व्यापार रूप कर्म को नष्ट करने वाला, ये भी मिटने वाला है, इसलिए उसका नाम है निश्चय चारित्र। पूर्ण अवस्था में होने पर तीनों मोक्ष के ही मार्ग है, यानी मोक्ष प्राप्त होगा इन तीनों की पूर्णता होने पर, किंतु व्यवहार रूप अथवा अपूर्ण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अशुभ कर्म को रोकता भी है और एक देश से क्षय भी करता है, एक देश यानी पार्शल, पूरा नहीं, क्योंकि वो पूर्णता को पहुंचेंगे तो पूरा नाश हो जाएगा। अब ये क्या है, अपूर्ण है ना, तो अशुभ कर्म को रोकता है, कहा वहां तो अभी पुण्य का बंधन भी हो रहा है, उसके साथ वाले जो शुभ भाव है उसके कारण, क्योंकि पूर्ण नहीं ना, अपूर्ण है, अपूर्ण है नहीं, उसके साथ और भी कुछ है, वहां तो मुख्यतः शुभ भावों की है, परंतु मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से बंद होता है। अब इसी का विशेषण, ऊपर निश्चय रत्नत्रय के लक्षण के साथ मोक्ष संवर निर्जरा तथा बंध का कारण कहा है। मिथ्या अर्थ के आग्रह से रहित जीवों को वो आग्रह रहता है ना, आत्मा होती नहीं कुछ, आत्मा फात्मा करते हो रात दिन, किसी ने देखा है क्या, सुना है क्या, सूंघा है क्या, ठंडे है गर्म है, कैसी आत्मा बताओ तो सही। होता तो इतने साइंटिस्ट को कहीं तो दिखाई देती कि नहीं, तो ये कहते ये आग्रह है उसका, ये मिथ्या अभिप्राय है तो है, उसका आग्रह भी है। ऐसे उससे रहित आत्म रूप को अथवा जिसके कारण मिथ्या अर्थ का आग्रह होता है, उस दर्शन मुनि कर्म से रहित आत्म रूप को निश्चय समय दर्शन कहते हैं। यहाँ आत्मा को ही निश्चय समय दर्शन, आत्मा उस रूप परिणमित हुआ है तो उसको निश्चय समय दर्शन कहा। संशय विपर्य और मोह से रहित, यहाँ मोह ने वो विमोह हमने देखा था ना अनध्यवसाय, उसको यहाँ मोह कहा। आत्म रूप को निश्चय समय ज्ञान कहते हैं तथा समस्त कषायों से रहित आत्म रूप को निश्चय सम्यक चारित्र कहते हैं। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में कहा है, ये तत्वार्थ सूत्र की टीका है, उसमें ऊपर लिखा देखा, मिथ्याभिमान निर्मुक्ति ज्ञानस्य इष्टम ही दर्शनम ज्ञानत्वं चार्थ विज्ञप्ति चर्यात्वं कर्महंत्रुता। कर्महंत्रुता ने कर्म को नाश करने की शक्ति है उसमें। चार बाय चौदह हो तत्वा श्लोक वार्तिक 54 और ऐसा ही संपंचन पद्मनंदी की बात है, इसलिए 4:14 लिखा है। तो ज्ञान का मिथ्या अभिमान से पूरी तरह से मुक्त होना समय दर्शन है। क्या कहा, मिथ्याभिमान निर्मुक्तिर ज्ञानस्य इष्टम ही दर्शनम, अर्थ को यथार्थ रीति से जानना सम्यक ज्ञान है और कर्मों का नाश सम्यक चारित्र। ये तीनों
अभिप्राय
क्या
ज्ञान या समय दर्शन की बात कही ना, वहाँ उसने सबको ज्ञान वापरा और मिथ्या अभिमान
ज्ञान का मिथ्या अभिमान से पूरी तरह से मुक्त होना
अभिप्राय से
अभिमान लिखा अभिप्राय नहीं मिथ्याभिमान निर्मुक्तम यानी इस प्रकार की परिभाषा हमेशा तो नहीं पाई जाती ना, ज्ञान का मिथ्या अभिमान से पूरी तरह समय दर्शन है, यानी उनके वो ज्ञान मद नहीं रहे, सभी मद नहीं रहते, वही लेना पड़ेगा। अर्थ को यानी सभी अर्थ है ना, अर्थ में स्व अर्थ पर अर्थ सभी को यथार्थ रीति से जाना, तत्वार्थ का श्रद्धा नमन के तत्व सम्य ज्ञान लिया यहाँ पर, ये जानने की बात ली इसलिए ज्ञान लिया, और कर्मों का नाश सम्यक चारित्र, और ये तीनों ही आत्मरूप होते हैं। आत्मा की परे ना आत्मरूप ही है, इसलिए अमृतचंद्राचार्य ने आत्मा के निश्चय को सम्यक दर्शन, आत्मा के परिज्ञान परिज्ञान पूर्ण ज्ञान सम्यक ज्ञान, और आत्मा के स्थिति को यानी आत्मा में स्थिरता है वो सम्यक चारित्र कहा है, और ऐसा ही पद्मनंदी पंचविंशति का में कहा है, वो चौदहवें अधिकार में 4th श्लोक। इनमें से सबसे प्रथम सम्यक दर्शन प्रकट होता है। देखो होता है तो तीनों एक साथ, परंतु उसमें भी कारण कार्य की अपेक्षा इसके पूर्वक वो होता है ऐसे कहेंगे। समयसार गाथा 320 की टीका के उपसंहार में विशेष कथन करते हुए आचार्य जयसेन ने कहा है, जब काल लब्धि आदि के योग से भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है, तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव रूप निज परमात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक अनुचरण रूप पर्याय से परिणत होता है। देखो क्या कहना चाहिए, काल लब्धि आदि के योग से। काल लब्धि आदि में क्या क्या लेना, पांचों ही संपन्न। कोई भी कार्य होते तो वहां पांच कारण स्वयमेव आ मिलते हैं। तो किसी की मुख्यता से कथन हो सकता है, कहीं जीव ने पुरुषार्थ किया तब ऐसा हुआ। हम कोई कहां कहेंगे दर्शन मुनि के उपशम से ये समय दर्शन प्राप्त हुआ। कथन किसी एक कारण की मुख्यता से हो सकता है, परंतु तो होते हैं वहां पांचों ही पांच। पांच समय के नाम मालूम है ना, बोलो।
स्वभाव,
पुरुषार्थ, निमित्त, कोई भी। हाँ
हाँ,
काल लब्धि होनहार और एक निमित्त। निमित्त को इसलिए क्योंकि ये चारों तो उपादान कारण है और पायक निमित्त कारण। पांचों समवाय को दो में विभाजित करना है तो हम कहेंगे उपादान और निमित्त। अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, उसकी कोई उसमें से त्रिकाली उपादान है, कोई क्षणिक उपादान है, उसकी चर्चा अभी यहाँ का विषय नहीं है। परंतु इसको कहेंगे काल लब्धि आदि पाकर। यहाँ काल की मुख्य, काल लब्धि की मुख्यता से अभी वो समय दर्शन की योग्यता थी, वो अभी समय आया है इसलिए समय दर्शन। परंतु बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा, बिना निमित्त के भी नहीं होगा। यानी वहां निमित्त अवश्य होता है, वो कुछ नहीं करता है कार्य में, परंतु वहां पूर्व अवस्था में देशना भी होगी, आगे तत्व विचार भी होगा। और जिस समय समय दर्शन होता है उस समय कर्मों में वो दर्शन मोहनी का उपशम उपशम जो कुछ यथायोग्य अवस्था रहेगी। ये सभी एट ए टाइम होते हैं, इसलिए काल लब्धि आदि के योग से क्या हुआ, भोव्यक्त शक्ति की व्यक्ति होती है। ये समय दर्शन किसके होता है, भोव्यों के कि अभोव्यों के? तो भव्य तो अनादि से भव्यत्व था उसमें, वो व्यक्त कब हुआ? तो कहेंगे जब जिस समय समय दर्शन हुआ तब वो भव्यत्व उसका व्यक्त हुआ, नहीं तो अनादि से भव्य होते हुए भी रखड़ रहा था। हाँ, पर्याय में व्यक्त होता, व्यक्ति होती नहीं, वो पर्याय में प्रकट होता है। तब यह जीव काल लब्धि आदि के योग से भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है। तब यानी ये अलग अलग एंगल से बता रहे, तब क्या होता है, जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव रूप निज परमात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धा, उसको सम्यक श्रद्धान होता है। किसका? तो कहते शुद्ध पारिणामिक भाव रूप निज परमात्म द्रव्य का सम्यक श्रद्धान होता है, उसी का सम्यक ज्ञान होता है। क्योंकि अभी तक उसके बारे में बहुत पढ़ा सुना, उसने ग्रंथों में पढ़ा, परंतु उसको नहीं ज्ञान का विषय बना, ये पढ़कर वो कैसा है वो जाना था, परंतु उसको जानकर उसका अनुभव नहीं लिया था। तो कहते उसका सम्यक ज्ञान, सम्यक अनुचरण ने उसी में स्थिरता, उसी को जानते रहना उस पर्याय से परिणत होता है, यानी उसको सम्य दर्शन होता है। इस परिणमन को आगम की भाषा में औषमिक भाव, क्योंकि अनादि का होगा उसको ये समय दर्शन हुआ तो कहेंगे औक्षमिक समय दर्शन हुआ, तो उसी को हम कहेंगे औक्षमिक भाव प्रकट हुआ, या क्षायोक्षमिक भाव या क्षायिक भाव कहते हैं। परंतु ये केवल वो दर्शन गुण पर लगाना, श्रद्धा पर, क्योंकि समय ज्ञान हुआ तो औक्षमिक भाव प्रकट हुआ ऐसा नहीं कहेंगे। ज्ञान में औक्षमिक ज्ञान नहीं होता, क्या हो जाएगा औक्ष में, औक्षमिक ज्ञान हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, कैसे होगा बोलो?
ज्ञान हो गया,
ज्ञानावरण का उपशम हो गया तो जड़ कैसे होगा?
तो ज्ञान का हो जाएगा,
पूरा ज्ञान का केवल ज्ञान हो जाएगा। ज्ञानावरण का उपशम हुआ ना, यानी ज्ञानावरण पूरा उदय में आने से रुक गया तो अंतर्मूर्त तो केवल ज्ञान हो जाएगा, सब जान लिया हमने तो वितरक्त रहेगी कि नहीं रहेगी? देखो ये तो उसके भावों की भाषा में, आगम की भाषा में उसको औषमिक हुआ ना, औषमिक सम्यक तो यक्षौषमिक सम्यक तो यक्षायिक सम्यक तो कहेंगे, किंतु अध्यात्म की भाषा में उसे शुद्धात्मा के अभिमुख परिणाम शुद्धोपयोग आदि कहते हैं। उसी चीज को अलग अलग भाषा में समझाया जाता है।
उसको विशुद्धि नहीं कहते,
विशुद्धि इसको नहीं कहते, विशुद्धि तो कषाय की मंदता को कहेंगे, परंतु ऊपर उदा विशुद्ध परिणाम या निर्मल परिणाम में उसको लिया तो जहाँ जिस अपेक्षा से कथन हो वहाँ उसको ले लेना। अकेले विशुद्धि से वितराग भाव होता है ऐसा नहीं लेगी, क्योंकि संकलेश विशुद्धि तो एक इंद्रियों के भी चलती रहती। अभी यहाँ जो विशुद्धि हम कहीं ना ऊपर के गुणसार में विशुद्धि अनंत गुना बढ़ती है श्रेणी में, तो वहां वो ऑलरेडी वितरागता है, परंतु विशुद्धि बढ़ते ने कषाय मंदता की ओर जा रहा है। यहाँ तो ऐसा जो भावों की औषमिक शौषमिक कहा, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है आगम की भाषा में वो करण के परिणाम वगैरह, और अध्यात्म की भाषा में शुद्धात्म मुख परिणाम। सम्यक दर्शन, दर्शन मुनि की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन सात कर्म प्रकृतियों के क्या कहते हैं, जहाँ सम्यक दर्शन हुआ उस संबंधी प्रकृतियाँ कौन सी है, तो दर्शन मुनि की तीन कौन सी बताओ, कौन सी है प्रेरणा बेन, हाँ ये तीन है, और अनंतानुबंधी की चार, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान माया और लोभ। इन सात कर्म प्रकृतियों के उपशम क्षय अथवा क्षोभशम से होता है, यानी उन कर्मों की क्या अवस्थाएं होती है, तो किसी के उपशम है, किसी के क्षोभशम है और किसी के क्षय, उसकी अवस्थाओं में नहीं जाएंगे हम। यह आत्मा के श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय, किसकी बात चल रही है, सम्यक दर्शन की। इसी से इस आत्मा का मिथ्या अभिनिवेश से शून्य यानी रहित आत्म रूप कहा है, यानी पहले वो कैसा था आत्मा कि उसके मिथ्या अभिप्राय था, अभी आत्मा कैसा हुआ मिथ्या अभिप्राय से रहित ऐसा वो आत्म रूप हुआ, उसी को हम जीव का सम्यक दर्शन कहते हैं। यह चौथे गुणस्थान के साथ प्रकट होता है, किंतु कहीं कहीं निश्चय सम्यक दर्शन को वीतराग चारित्र का अभिनाभावी कहा है, इसलिए कुछ विद्वान चतुर्थ गुणस्थान में निश्चय सम्यक दर्शन नहीं मानते। टीकाकार ब्रह्मदेव ने परमात्म प्रकाश की टीका में इसका अच्छा खुलासा किया है, वहां कहते कि आगम में सम्यक्त्व के दो भेद कहे हैं, सराग सम्यक दर्शन और वितराग सम्यक दर्शन। देखो सम्यक दर्शन ना सराग होता है ना वो तो वितराग परिणाम ही है, परंतु उस सहित जब राग विद्यमान है तो उसी को सराग कहे। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य आदि से अभिव्यक्त होने वाला सराग सम्यक दर्शन है, उसे ही व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, ये सम्यक दर्शन के बाह्य चिन्ह बाह्य लक्षण बताए जाते हैं, क्या क्या बताए माधवी, प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य, इसका अर्थ बताएंगे कोई नलिन भाई, प्रशम का अर्थ क्या है, वो संवेग में आता है मंदता शांत परिणाम जिसको प्रशम उपशम भी कहते हैं उसको, पर ये कर्मों का उपशम वाला उपशम नहीं है, हाँ संवेग यानी संसार का उसको संवेग कहेंगे या धर्मानुराग दोनों उसमें लेते हैं। अनुकंपा ने जीवों के दया के परिणाम जीवों के प्रति, और आस्तिक के ने जो सर्वज्ञ भगवान ने बताई है बात, छह द्रव्यों का स्वरूप है, त्रिलोक की रचना है, वो ऐसे ही है, ऐसा उसका जो भाव है उसको कहेंगे आस्तिक के भाव। नहीं तो यहाँ तो भगवान का नाम लेते हैं और यहाँ स्वर्ग नरक होते ही नहीं, किसने देखे, ये समो शरण आदि होते ही नहीं, रचना होती तो आज कुछ तो उसके हम मिल जाते ना अवशेष, ऐसे हमको बताने वाले जय नहीं मिलते हमारे कोई। हाँ, मोहिन जोदड़े के अवशेष मिले 5000 वर्ष से, और महावीर तो अभी 2500 वर्ष पहले हुए, उसके समोचरण के अवशेष नहीं मिले क्या, ऐसे पूछते हैं। उनको क्या पता कि ये देवों के द्वारा वो तो रचना की है। आपका कोई प्रधानमंत्री आने वाला है यहाँ मुंबई में, तो उसके लिए स्टेज वगैरह सब बनाते हैं कि नहीं बनाते है? हाँ, तो 10 साल के बाद उसके अवशेष मिलते हैं क्या? अरे दूसरे दिन नहीं मिलते, ये वो रचना टेम्पररी बनाई जा रही है समोषण की। ये ऐसे प्रश्न उल्टे पुलटे कुछ भी चलते रहते लोगों के दिमाग में, तत्व का सही स्वरूप समझते नहीं है, ना ही सर्वज्ञता स्वरूप की निश्चिति यानी निर्णय करते हैं, तब ये उटपटांग बातें ऐसी होती है। और सर्वज्ञ के वाणी पर तभी विश्वास हो सकता है जब सर्वज्ञ का स्वरूप पहले निश्चित करेंगे, तब उसी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो आगे की कोई बात उनके पल्ले नहीं। तो कहते उसे व्यवहार समय दर्शन कहते, उसके विषय वो 6 द्रव्य है, 6 द्रव्यों का भी निर्णय पहले होना चाहिए। इस विश्व में 6 द्रव्य है, उसमें से मैं कौन सा द्रव्य हूँ, ये अन्य बातें कौन सी है, नहीं तो बस ये यहाँ एक मैं ही हूँ बाकी कुछ है ही नहीं, ये सब माया है, ये कहने वाले भी ऐसे मत है इस विश्व में, मैं भी हूँ और पर भी है, अस्तित्व तो सबका है, तो इसमें से मैं कौन हूँ इसको भिन्न कैसे पहचाना है, तो उसके लिए 6 द्रव्यों को पहले हाँ जानना चाहिए। कोई 5 द्रव्य मानता है, काल को मानता ही नहीं है, तो उसने सही नहीं जाना, सही नहीं माना, जितना जो है उसको उतना मानना पड़ेगा, वैसा मानना पड़ेगा, वैसा जानना पड़ेगा, नहीं तो वो ज्ञान खोटा हो गया। आत्मा का स्वभाव क्या है तो ज्ञान, तो कैसा जानना आत्मा का स्वभाव है, कम जानना कि अधिक जानना कि विपरीत जानना, ये रत्नगिरी शावकाचार्य में मिथ्या ज्ञान क्या है, या तो कम जानता है या अधिक जानता है या विपरीत जानता है, कम यानी जितना है उतना नहीं जान रहा है, तो कम जान रहा है या अधिक जान रहा है, कुछ है ही नहीं उसके स्वरूप में उसको जान रहा है, या भी प्रीत जान रहा है, ये सारा मिथ्या ज्ञान है। तो कहते उसके विषय वो 6 द्रव्य हैं, ये 6 द्रव्य 7 तत्व सब उसके विषय में आ जाएंगे। वितराल सम्यक्त्व का लक्षण निज शुद्धात्मा की अनुभूति है, यानी जो हम निश्चय समय दर्शन कहेंगे तो वो उसका लक्षण क्या है, निज शुद्धात्मा की अनुभूति। अनुभूति हुई ने क्या हुआ, हाँ आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ, वही अनुभूति है, और वो तो ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय है, परंतु ऐसा ज्ञान हुआ उसके द्वारा जानना कि यहाँ समय दर्शन हुआ, क्योंकि सम्यक दर्शन इटसेल्फ वो जो पर्याय है, वो ऐसे अलग ये ज्ञान की पर्याय है, ये दर्शन की पर्याय ऐसा नहीं होता है। आत्मा के अनंत गुणों का एक रूप अभेद ऐसा जो अतीन्द्रिय आनंद आ गया है, ज्ञान ने उसको जाना और तभी निश्चित हुआ कि जीव को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हुआ है, मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है। तो कहते वितराग सम्यक्त्व का लक्षण क्या बताया, लक्षण तो कहते निज शुद्धात्मा की अनुभूति। इसमें कुछ अटपटा लगता है, श्रद्धा गुण का लक्षण ज्ञान को कहा, इसको कैसा लक्षण, अनात्मभूत, ये अनात्मभूत क्या होता है अश्विन भाई, देखो देखो अग्नि का लक्षण उष्णता कहना वो तो उसका आत्मभूत लक्षण है बराबर, परंतु हमने कहते वो कौन है आदमी, अरे वो टोपी वाला है, वो चश्मा वाला है, वो काठी वाला है, वो जो जो कुछ है वाला वाला, वो उससे भिन्न है, उसके अंगभूत नहीं है वो, उसे बाह्य कोई है, उसके द्वारा हमने उसका लक्षण बनाया, वो है उसका लक्षण, वो लक्षण में, लक्षण के लक्षण में, लक्षण के डेफिनेशन में बैठता है प्राण, परंतु वो उसका आत्मभूत नहीं, उसका नहीं है वो, उससे बाह्य है। ऐसे ही यहाँ सम्यक दर्शन हुआ, वो श्रद्धा गुण के पर्याय प्रकट हुई, और उसको हमने ज्ञान के द्वारा जानना, तो उसको हम अनात्मभूत लक्षण कहेंगे, यही रुकेंगे हम। जावानी हे ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।